ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர்க், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யூ ஆர் அபவுட் டு லிசன் ஈஷா வாசியோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமினி சந்தோஷி மாதாஜி. தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
ஆத்மா கே தர்சன் கே லியே பஹலி பாத் க்யா கரோ போலே சுனோ உஸ்கே லியே. சுனோ சுனோ போலே க்யா சுனோ? उस सुनाने वाले को सुनो. वो सुनाने वाला है. कौन सुनाने वाला है? किस कौन सुना रहा है? वो चेतन जो हमारे भीतर बैठा हुआ है, उसके सुने. हम सुनते हैं किसके सुनते हैं? बोले अपनी वासनाओं की सुनते हैं. आप सामान्य रूप में भी कहते हैं ना, हमारे भीतर दो मन बोलते हैं. एक मन जो वासना के साथ लिप्त है और दूसरा मन जो उससे सूक्ष्म है, मन का दूसरा छोर जिसमें ज्ञानांश विद्यमान है, ज्ञान का अंश है, प्रकाश का. रे मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान. जो चेतनता इस मन के अंदर विद्यमान है, बोले उस चैतन्य मन की सुने. उस चेतन मन की सुने. हम उसके न सुन करके किसकी सुनते हैं? बोले केवल बाह्य मन की सुनते हैं. और ये मन का संबंध किससे है? इंद्रियों से, ज्ञानेन्द्रियों से. ज्ञानेन्द्रियों का संबंध किससे है? कर्मेंद्रियों से. और कर्मेंद्रियां दौड़ रही हैं और ज्ञानेन्द्रिय इन्हें दौड़ा रही है और मन इनके पीछे दौड़ रहा है. और इस दौड़ में दौड़ते दौड़ते बहुत समय हो गया. और दौड़ते दौड़ते थक. बोले दौड़ किसके लिए रहे? दौड़ किसके लिए है? दौड़ने का लक्ष्य क्या है? बोले दौड़ने का लक्ष्य तो सही है, दौड़ सबकी एक ही तरफ है. दौड़ किसकी तरफ है? सबकी दौड़ है सुख की ओर. सबको सुख चाहिए. सुख के पीछे भाग रहे हैं. भाग किसके पीछे रहे? सुख के पीछे ही भाग रहे हैं. परंतु सुख भागने से, दौड़ने से नहीं मिलता, याद रखना. सुख के पीछे जितना हम दौड़ेंगे उतना सुख हमको हमसे दूर भागता नजर आएगा. इसलिए सुख के पीछे दौड़ो मत. सुख कहाँ है उसे पहचानो. दौड़ने की जो दिशा है इंद्रियों की, वो दिशा गलत है. वो बाह्य दौड़ रही है. इसलिए उन कर्मेंद्रियों को लौटा करके, उन ज्ञानेंद्रियों को लौटा करके, उस मन को लौटाने. बोले ज्ञानेंद्रियां कब लौटेंगी? कर्मेंद्रियां कब लौटेंगी? जब सबसे पहले मन लौटेगा. मन को इसीलिए संतों ने हमारे यहाँ शास्त्रों में समझाने के लिए, कहने के लिए, बताने के लिए, सिखाने के लिए किसी दूसरे को इंगित नहीं किया. उंगली सामने वाले के लिए नहीं उठी. इशारा उनका अपने मन के लिए रहा. रे मन तू ज्योत स्वरूप है, गुरु नानक ने कहा. अपने मन से कहा. अब कबीर ने जो कहा अपने मन को कहा. रहीम ने जो कहा वो अपने मन को इंगित करके कहा. संतों ने जो कहा वो किसको कहा, किसको सुनाया, किसको समझाया? बोले अपने मन को सिखाया, अपने मन को पढ़ाया, अपने मन को समझाया, अपने मन को बताया. और उनका इशारा सारा किसकी ओर रहा? बोले अपने मन की ओर. हमारा इशारा क्या रहता है? हमारे सामने वाला समझ जाए, हमारे सामने वाला सीख जाए, बेटा समझ जाए, बेटी समझ जाए, बहू समझ जाए, परिवार समझ जाए. हम दूसरों को इंगित करके चलते हैं. पर अध्यात्म बाहर से नहीं, अध्यात्म अपने भीतर से है. मैंने पहले दिन कहा था, हमको अपने अंदर आना है. इसलिए ये जो आत्मघात हम कर रहे हैं, अन्य का धर्म अन्य में आरोपित कर रहे हैं. यूं तो हम व्यवहारिक जगत में भी किसी का दोष किसी के ऊपर लगा देते हैं तो कहते हैं बड़ा अनर्थ होगा, अन्याय हो गया. देखो ये तो झूठा उस पर आरोप लगा दिया, ये अन्याय है. तो सोचो आप अपने साथ कौन सा न्याय कर रहे हैं? जब आप अन्याय की बात करते हैं तो सबसे बड़ा अन्याय तो आप अपने साथ कर रहे हैं। जो अपने को न्याय नहीं दिला सकेगा वो दूसरे को क्या न्याय देगा ना। इसलिए दूसरे से न्याय करने से पूर्व पहले अपने आप से न्याय करो, अपने को समझो, अपने लिए विचार करो कि हम कर क्या रहे हैं। हम जब तक दोनों को अलग अलग करके नहीं समझेंगे, शरीर और शरीरी, देह और देही को दोनों को भिन्न करके अलग नहीं पहचानेंगे, तब तक हमसे ये अन्याय होता रहेगा। मैं को देह समझना सबसे बड़ा पाप है, यही सारे पापों का बाप है, सारे अनर्थ का कारण। सारे अनर्थ का कारण क्या है? देहात्म बुद्धि। इस शरीर में जो मैं बुद्धि हमारी हो गई है, और इस मैं बुद्धि के कारण हमें क्या मिलेगा? असूरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावर। इस मैं बुद्धि के कारण ही हमको ये लोक अनेक कष्ट भोगने को मिलेंगे नारायण। इसलिए उपनिषद हमें ये समझाना चाहती है, हमारे लिए जो मार्ग है। ये तीन मंत्र बहुत ही सुंदर, जिनमें पहला जो पहली बात है वो विवेक दृष्टि की बात है, आत्म दृष्टि की बात है, अपनी दृष्टि बदलने की बात है। कि इस उपनिषद कहती है दृष्टि बदलो, ईशावास्यमिदं सर्वं यद् जगत्याम जगत, ईश्वर दृष्टि से संसार में रहो। बोले हम ईश्वर दृष्टि करना बड़ा कठिन है, नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता। तो दूसरा फिर क्या बचा? फिर दूसरा रास्ता बचा, कुर्वन्नेह कर्माणि जिजिच्छामि सतगुणसमा, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करो। दूसरी बात बचे, केवल यदि वो नहीं कर सकते हैं तो कर्म। कर्म किससे हो रहा है? बोले इंद्रियों से। ये इंद्रियों के द्वारा आप जो कर्म कर रहे हैं, देहाभिमानी जो लोग हैं जिन्हें कर्माभिमान है, कर्माभिमान कौन, कर्म का अभिमान किसको है? बोले कर्म का अभिमान इंद्रियों को है। इंद्रियां अपने अपने कर्म का अभिमान रखती हैं, और इन कर्मा अभिमानी इंद्रियों को जो अपने कर्म के अभिमान में सवार है, इन इंद्रियों को इनके कर्म के साथ लगा करके रखें, कर्तृत्व बुद्धि से ना करके केवल कर्म करना है। आंख देख रही है, स्वाभाविक रूप से उसका अपना कर्म है देखना, और कान सुन रहे हैं शब्द, उसका अपना धर्म है, इंद्रिय सुन रही है, अपने अपने स्वभाव से, अपने अपने कर्म से, प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने कर्म में, अपने अपने उसमें बरत रही है। परंतु जो इंद्रियां अपने कर्मों के साथ बरत रही हैं, चल रही हैं, उन इंद्रियों का पृथक पृथक धर्म हम समझें कि अब इन इंद्रियों में, इंद्रियों के विषयों से, इंद्रियों से आसक्ति न होने पाए, न लिप्यते न रह। कर्म इंद्रियों में भी आसक्ति न हो, इंद्रियों के विषय में भी आसक्ति न हो, अनासक्त भाव से दोनों में आसक्ति किए बिना हम कर्म करें और 100 साल तक जिए, ये हम दूसरा मार्ग बचा। और यदि ये दोनों नहीं हुए, ईश्वर दृष्टि नहीं, भगवत दृष्टि संसार के लिए नहीं हुई, और कर्तव्य अभिमान से रहित होकर हम कर्तृत्व कर्म नहीं करेंगे, तो तब क्या होगा? यदि ये दोनों मार्ग नहीं हुए तो तब कहा कि असूरिया नामते लोका अंधेन तमसाव्रता, उस जहां अंधकार भरा हुआ है ऐसे अंधकूप में धकेल दिए जाओगे। क्योंकि आत्महनोजना, तुमने अपराध ये किया है कि आत्मघात किया है, माने अपने साथ अन्याय किया है, अपने आप के साथ अन्याय किया है। मैं पर जो आरोप आरोपित किए हैं, इंद्रिय धर्म, इंद्रिय का धर्म, देह धर्म को आरोपित कर दिया, मन के धर्म को आरोपित कर दिया, बुद्धि के धर्म को आरोपित कर दिया, कर्मेंद्रियों के धर्म को आरोपित कर दिया। ये सब आरोप हम किस पे लगाते रहे? बोले जो शुद्ध निष्कल आत्म स्वरूप है, जो केवल दृष्टा है, साक्षी है, चेतन है, निर्विकार है, निर्द्वंद है, निर्लिप्त है, असंग है, शुद्ध है, ऐसे शुद्ध तत्व आत्मा पर हमने ये दोष लगाए हैं। इसलिए आत्महनोजना उन लोगों को अंधेरे में ऐसे जगह में धकेल दिए जाओगे तो ये बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और सच तो यही है कि हमसे यही भूल होती आ रही है। उपनिषद तो हम सुनते हैं परंतु अपने आप को अपने देह भाव से अलग नहीं कर पाते। हमारी स्थिति ऐसी है कि देह में हम इतने रम चुके हैं, ऐसे हम इस शरीर के साथ मुग्ध हो चुके हैं कि शरीर में दिन रात इतनी आसक्ति हो गई है। संत आकर, गुरुजन आकर बार बार आपसे ये कहते हैं, भैया तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, बार बार उपनिषदों के द्वारा सुनते हैं, फिर भी इतना सुनने के उपरांत भी हम अपने आप को क्या मानने लगते हैं? बोले यही मानने लगते हैं कि मैं शरीर हूं। ये कैसी शरीर की एक ये जो भ्रांति है ना, बहुत लंबे समय से, एक उदाहरण से समझना कि एक सुदर्शन नामक व्यक्ति और उसे एक रंगमंच पर एक स्त्री का अभिनय करने के लिए दिया गया और वह व्यक्ति, उसने अपने मन में यह सोचा कि मुझे स्त्री का अभिनय बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करना है, जिससे कि जिसने मुझे ये अभिनय करने को दिया है वो मेरे इस अभिनय को देखकर वाह वाह करने लगे, खुश हो जाए। और उस व्यक्ति ने अपने आप में इस स्त्री का अभिनय करने के लिए, जब तक उसके हृदय में स्त्री का भाव पूरा नहीं उतरेगा तब तक उसकी अभिव्यक्तियां वो स्त्री के रूप में प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए उसने अपने ड्रामा को बढ़िया बनाने के लिए स्त्री का चिंतन करते करते, बोलने का, बात करने की, उसकी हर जो उसका अभिनय था उसमें इतना डूब गया, इतना डूब गया कि जब उसने मंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत किया तो देखने वालों ने कहा कि वाह कितना अच्छा किया, कितना अच्छा किया इसने, सब तालियां बजाने लगे, वाही वाहियां होने लगी। और जो उस दामा को पात्र, जिसने उसे ये कार्य सौंपा था, वो भी बहुत प्रसन्न हो गया, डायरेक्टर बहुत प्रसन्न हो गया। परंतु सुदर्शन नामक व्यक्ति के अंदर ये अभिनय करते करते उसके अंदर ये भाव आ गया कि बस मैं स्त्री हूं। अब तो वो स्त्री के जैसे ही कपड़े पहनने लगा, स्त्री के जैसे ही बोलने लगा और स्त्री के जैसे ही संकोच करने, लज्जा, शील, ये सब जो स्त्री के स्वाभाविक गुण होते हैं वो अपने गुणों को उसी तरह से जाहिर करने लगा। सभी लोगों के मन में बड़ी भारी भ्रांति, बड़ी भारी भ्रांति कि इसको ये तो बहुत बुरा हो गया इसके साथ, और कैसे इस भ्रम से इसे निकाला जाए, क्या उपाय किया जाए। बड़े डॉक्टरों को दिखाया, बड़े वैद्यों को दिखाया, बड़ा उपचार किया, कैसे किसी तरह से छूटे, परंतु कोई अंतर नहीं हुआ। इतने में एक संत पहुंचे, उनसे कहा महाराज ऐसे ऐसे उस व्यक्ति की बात कही। उन्होंने कहा ठीक हो सकता है, ये ठीक हो सकता है, परंतु इसे ठीक होने में समय लगेगा, 6-8 महीने का समय इसके लिए चाहिए। तो महात्मा की 6-8 महीने रुकने की व्यवस्था की गई और कहा कि इस व्यक्ति को, महात्मा उसके पास जाते हैं, धीरे धीरे उससे बैठते हैं और उसी भाषा में उससे बात करते हैं जैसे कोई स्त्री हो, और साथ जाकर बैठते हुए बात करते हुए और धीरे धीरे उनके साथ बोलते हुए उसके अंदर महात्मा ने एक रुचि पैदा की पहले कि ताकि वो उनकी बात को ध्यान से सुन सके, और वो व्यक्ति के साथ उठते बैठते खाते बोलते हंसते और बातें करते हैं, धीरे धीरे उस महात्मा का संग अच्छा लगने लगा। उस सब के पीछे उद्देश्य क्या था? उसकी बुद्धि में पड़ा हुआ भ्रम दूर करना। तो महात्मा बात करते 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 जब वो उनकी बात को ध्यान से सुनने लगा तो 7-8 महीने के बाद महात्मा ने ऐसा प्रसंग लिया, ऐसी युक्ति की, उस युक्ति से वो स्त्री के लक्षण और पुरुष के लक्षण दोनों उस पुरुष के सामने प्रकट करने लगे। पुरुष के ये लक्षण होते हैं और स्त्री के ये लक्षण होते हैं। जब स्त्री के लक्षण वर्णन करते तो उस सुदर्शन में को पूछते क्या तुम्हारे में ये लक्षण है, तो उससे उत्तर मिलता ये तो नहीं है। तो दूसरा पुरुष का लक्षण उस पर पूछते तो बोले हाँ ये लक्षण तो मुझ में है, और दोबारा उससे पूछते कि ये लक्षण स्त्री का है तुम्हारे पास ये लक्षण, वो अपने में उस लक्षण का, स्त्री के लक्षणों का अभाव पाता और पुरुष के लक्षणों को अपने भीतर प्राप्त पाता। तो धीरे धीरे जैसे ही उस पुरुष के संपूर्ण लक्षण उन्होंने प्रकट किए तो वो सुदर्शन एकदम कह बैठा कि अच्छा मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष हूँ। वो अपने आप को, वो पुरुष पहले भी पुरुष ही था, वो पहले भी पुरुष ही था, परंतु जब उन्होंने, महात्मा ने पूर्ण पुरुष के लक्षण उसके अंदर लक्षित करा दिए, दिखा दिए, तो वो अनायास कह बैठा कह रहे मैं तो एक आदमी हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ, पुरुष हूँ। जब वो स्त्री समझ रहा था अपने आप को तब भी वो पुरुष ही था, उसमें कोई अंतर नहीं था। तो कहने का अर्थ मेरा ये है, इसी तरह से हमको देह की भ्रांति हो गई है, हमने अपने आप को शरीर समझ लिया है, शरीर समझ लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वो पूर्ण पुरुष परमात्म तत्व का लक्षण नहीं है। वो है, परंतु फिर भी हमको बहुत समय से, क्योंकि ये शरीर का संग बहुनानी जन्मानी, न जाने कितने जन्म हुए, कितने जन्मों में ये शरीर कितने रूप से हमें मिला, नाना प्रकार से ये शरीर को हम मिलता रहा और इस शरीर के साथ भोग भोगते रहे, सुख दुख भोगते रहे, शरीर के साथ हमें जीने की ऐसी आदत पड़ गई है, ऐसी आदत पड़ गई है कि अब हमारी बुद्धि में ये पूर्ण रूप से ये बात आ गई कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं युवा हूँ, मैं वृद्ध हूँ, मैं बालक हूँ, अर्थात इस प्रकार की जो शरीर की अनुभूतियाँ हैं वो हमारे अंदर हो गई और हम उसे ही अपना स्वरूप समझ करके, अपना आप समझ करके हम इसके साथ जी रहे हैं। तो ये जो भ्रांति है नारायण, एक समय की नहीं है, बहुत जन्मों से। और इस भ्रांति को दूर करने के लिए बोले आवश्यकता है, महात्मा ने एकदम से उसको उसकी भ्रांति को दूर नहीं किया, महात्मा ने युक्ति पूर्वक लंबे समय तक। तो उसी प्रकार युक्तियों से, युक्ति बोले कौन सी युक्ति, शास्त्र की युक्ति, उपनिषदों की युक्ति से जब विचार करेंगे, उपनिषदों की युक्ति के द्वारा गुरुजन आपको शास्त्र की युक्ति के द्वारा बताएंगे, बोले सत्संग करेंगे, बहुकाल करिए सत्संग का, लंबे समय तक। आप कहेंगे कि थोड़े से समय से सो जाए, बोले नहीं, उसके लिए हमें लंबे समय तक सत्संग की आवश्यकता है। और जहां सत्संग, यदि आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मैं उस तत्व को समझूं, ऐसी जिज्ञासा हो, महाराज जनक जिज्ञासु थे, उनके यहाँ संत आते थे, उनका आदर होता था, सत्संग होता था, तो उनको तत्व का बोध एक न एक दिन उन्हें उनके अष्टावक्र जैसे ऋषि मिल भी गए और उन्हें तत्वानुभूति हो भी गई। यदि वो सत्संग उनके अनजिज्ञासु न होते, उनके यहाँ तत्ववेताओं का तत्ववेता के रूप में बहुत संत आते थे, सभी अपने को तत्ववेता कहते थे, परंतु महात्मा महाराज जनक किसी का निरादर नहीं करते थे, सबकी सुनते थे, सबका सत्संग करते थे, पर सत्संग करते 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 एक दिन उन्हें तत्ववेता महापुरुष भी मिल गए। तो उसी तरह से हम सत्संग करते रहेंगे सुनते रहेंगे सुनते रहेंगे, एक दिन वो युक्ति से बताने वाला तत्ववेता, जैसे युक्ति से बताया ना संत महाराज जनक ने सुना, महाराज जनक ने क्या सुना क्या पढ़ा, बोले ये सुना कि यदि तत्ववेता कोई महापुरुष मिल जाए तो घोड़े के रकाब में पांव रखकर घोड़े में जितना समय चढ़ने में जितना समय लगता है उतने में तत्वानुभूति हो सकती है। बस महाराज जनक की खोज बढ़ गई, ऐसा मुझे तत्ववेता मिले। उस समय तत्ववेताओं की सभा में उन्होंने कहा, आप में से कोई तत्ववेता ऐसा हो जो मुझे तत्व की अनुभूति करा दे, परंतु कौन कराए उन्हें। महाराज जनक तत्ववेता के लिए जब उसी में अष्टावक्र के पिताजी भी गए हुए थे, उन्होंने जब ये बात पिता उत्तर नहीं दे पा रहे थे तो महाराज अष्टावक्र पहुंचे, उन्होंने कहा राजन पहली बात तो ये है कि तुमने जो कुछ पढ़ा है और कहाँ है वो घोड़ा, कथा बड़ी लंबी है, सार यही है कि कहाँ है वो घोड़ा कहाँ है वो रकाब। तो उन्होंने कहा महाराज वो घोड़ा भी उपस्थित किया गया और घोड़े में चढ़ने का वो दृश्य भी उपस्थित किया गया, अब कहा तुम घोड़े में बैठो, जैसे पांव रख के चढ़ने लगे तो कहा कि आगे बताओ क्या था, इससे आगे वाक्य पूरा करो, तो कहा कि पात्रता होनी चाहिए, तो कहा तत्ववेता भी यहाँ है घोड़ा भी यहाँ है, पर अब तुम में वो पात्रता है, तुम उस पात्रता को वो पात्रता प्राप्त है, बोली वो पात्रता प्राप्त है वो कैसे समझेंगे, ये तो गुरुजन ही जानेंगे, ये तो वही बता सकते हैं, अष्टावक्र ही बता सकते हैं कि जनक में वो पात्रता है या नहीं है। तो कहने का अर्थ मेरा ये था कि हमें सत्संग सुनते सुनते हमारे अंदर वो पात्रता है या नहीं है ये कौन बता सकेगा, बोले तत्ववेता ही बता सकेगा, तत्व को जानने वाला ही बता सकेगा। तो जब तत्ववेता जी के अंदर की दृष्टि में आप उसके पात्र हैं, तो ऐसा तत्ववेता ज्ञानी कोई नहीं होता जो पात्रता को प्राप्त होने पर भी उस तत्व का बोध उसे प्रदान न करे। तो इसलिए वो पात्रता हम अपने अंदर अपने को ऐसा पात्र बनाएं, और ऐसा पात्र बनाने के लिए पात्रता क्या चाहिए, बोले जिज्ञासा का पात्र, जिज्ञासा का पात्र बने, और उस जिज्ञासा को, जिज्ञासा होनी बड़ी बात है नारा, और जिज्ञासु सही रूप से जिज्ञासु बनकर हम बैठे और ध्यान से सुने तो सचमुच हमें वो तत्व का बोध होगा, जिस तत्व का बोध करने के लिए हमें भगवान ने ये शरीर दिया है, और इस अनर्थ से हम तभी बच पाएंगे। कौन से अनर्थ से, जो दिन रात आत्मघात कर रहे हैं, जो दिन रात हमसे बहुत बड़ा भूल हो रहा है कि हम अपने शरीर को परमात्मा और उस तत्व का बोध क्या कराएंगे, बोले लक्षण दोनों के अलग अलग कर, जैसे उदाहरण दिया मैंने सुदर्शन को अलग लक्षण करके बताएं, पर उसी तरह से परमात्मा के आत्मा के लक्षण करते हुए अनात्म को अलग करते हुए, अनात्म को अपने से अलग कर आत्मा से, आत्मा के स्वरूप से, हमारी स्वरूप से लक्षित कराते हुए अनात्म रूप से हमें अलग करते हुए स्वरूप हमारा स्पष्ट होता जाएगा। जब अनात्म रूप जगत हमसे अलग होता जाएगा, जब तक ये छूटेगा नहीं तब तक स्वरूप भूत अनुभूति नहीं हो सकती है नारायण। इसलिए शरीर में कहमा एक एक कर्मेंद्रियों को अलग कर, ज्ञानेंद्रियों को अलग कर। संत तो आपको बार बार ये बात कहते हैं, भैया देखो सुनो। महात्मा तो ये बात आपको कहते हैं कि आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो, जन्म मरण तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है, तुम सत हो, चित हो, आनंद हो। सत चित आनंद के लक्षण से आपको लक्षित कराते हैं। परमात्मा का यद्यपि कोई लक्षण नहीं है, फिर भी उनके तीन लक्षण करके जो शास्त्र ने बताए हैं उन लक्षणों से आपको लक्षित कराते हैं। पर उस पर हमारी निष्ठा बननी चाहिए, तभी जीवन का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को यही विराम देते हैं। शेष चर्चा कल करेंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की।